एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर खबरों में तो रहता है पर जिसकी असलियत पर्दे के पीछे होती है, भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है, खासकर क्लॉस डॉट्स की किताबें जियोपॉलिटिक्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन और जियोपॉलिटिक्स। इनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के मंच पर ये खेल मतलब कैसे खेला जाता है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ देशों और सरहदों की कहानी नहीं है जैसा डॉट्स बताते हैं, ये इस बात की कहानी भी है कि दुनिया को हमारे सामने कैसे पेश किया जाता है, कौन सी कहानियां हमें सुनाई जाती हैं और क्यों।
हाँ, और आज के दौर में तो ये और भी जरूरी हो गया है। यूक्रेन से लेकर क्लाइमेट चेंज, चीन अमेरिका तनाव, सब कुछ हमारी जिंदगी पर असर डाल रहा है, तो ये समझना तो बनता है।
सही कहा। तो आज का हमारा इरादा यही है, क्लॉस डॉट्स के नजरिए से भू राजनीति के ताने बाने को थोड़ा सुलझाना
और ये देखना कि ये हमारी सोच को, हम जो फिल्में देखते हैं, यहाँ तक कि हमारी पहचान को कैसे शक्ल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस शख्स से जिनके विचारों पर हम बात कर रहे हैं। क्लॉस डॉट्स हैं कौन और उनकी बात में ऐसा क्या खास है?
क्लॉस डॉट्स वो लंदन यूनिवर्सिटी के रॉयल हॉलोवे कॉलेज में जियोपॉलिटिक्स के प्रोफेसर हैं, पर वो सिर्फ मतलब किताबी प्रोफेसर नहीं है।
अच्छा।
हाँ, उनकी खासियत ये है कि वो ध्रुवीय क्षेत्रों, आर्कटिक और एंटार्कटिक के एक्सपर्ट हैं, और साथ ही मीडिया सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी उनकी गहरी पकड़ है। तो उनका नजरिया सिर्फ पारंपरिक शक्ति केंद्रों जैसे वॉशिंगटन या बीजिंग तक ही सीमित नहीं है।
मतलब जमीनी हकीकतों से भी जुड़े हैं। और उनके काम को क्या चीज खास बनाती है, मतलब क्यों सुने हम उन्हें?
मेरे ख्याल से तीन बातें। पहली, वो आलोचनात्मक भू राजनीति यानी क्रिटिकल जियोपॉलिटिक्स के बड़े पैरोकार हैं। ये वो नजरिया है जो सवाल पूछता है कि भाई ये जियोपॉलिटिकल आइडिया बनते कैसे हैं, किसके हित साधते हैं।
ओके।
दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, उनका रिसर्च सिर्फ बड़ी राजधानियों तक नहीं बल्कि वो बर्फीले इलाकों और सुनिए जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्मों तक भी जाता है।
जेम्स बॉन्ड, क्या बात है।
हाँ, ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स हर जगह है। और तीसरी, वो मुश्किल आइडियाज को बहुत आसान और दिलचस्प बना देते हैं आम पाठक के लिए।
जेम्स बॉन्ड वाली बात तो वाकई मजेदार है। तो उनकी किताबों का निचोड़ क्या है फिर? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला बता रहे हैं दुनिया पर राज करने का?
हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो पुरानी सोच को चैलेंज कर रहे हैं। वो जो क्लासिकल जियोपॉलिटिक्स थी ना।
हाँ हाँ, वो भूगोल वाली बात कि जमीन और समंदरी सब कुछ है।
बिल्कुल, जैसे मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी या महान की समुद्री शक्ति, वो मानते थे कि भूगोल ही आपकी किस्मत तय करता है, जिसके पास जमीन या समंदर पर कंट्रोल वही सिकंदर।
पर डॉट्स इससे सहमत नहीं है।
नहीं, डॉट्स का तर्क है कि भू राजनीति असल में दुनिया को खास तरीकों से दिखाने या प्रस्तुत करने का एक शक्तिशाली तरीका है, रिप्रेजेंटेशन।
दिखाने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन, मतलब
ये एक दुनिया को समझने और समझाने का एक नजरिया है जिसका इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक मकसद साधने के लिए होता है। ये एक विमर्श है, डिस्कोर्स, यानी बोलने, लिखने, नक्शे बनाने, फिल्में बनाने का वो तरीका जो हमारी सोच और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को गढ़ता है। ये सिर्फ तथ्यों का खेल नहीं है, ये कहानी कहने की कला है।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि भू राजनीति एक तरह से दुनिया की तस्वीर बनाने जैसा है और बनाने वाला तय करता है कि तस्वीर कैसी दिखेगी और क्यों। शायद यहीं पर वो रोल और गोल वाली बात फिट होती है। भू राजनीति का रोल है हमारी समझ बनाना और उसका गोल है किसी खास एजेंडे को आगे बढ़ाना।
एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल। डॉट्स की किताबों का सेंट्रल सवाल यही है, दुनिया के बारे में ये भू राजनीतिक विचार बनते कैसे हैं, फैलते कैसे हैं, इन पर बहस क्यों होती है और ये हमारी जिंदगी में मायने क्यों रखते हैं। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि भूगोल पत्थर की लकीर नहीं है बल्कि उसकी व्याख्या ही असली खेल है।
तो चलिए इस खेल को थोड़ा और समझते हैं। किताब किन मुख्य हिस्सों पर बात करती है, मतलब अंदर क्या है?
डॉट शुरुआत करते हैं क्लासिकल बनाम क्रिटिकल भू राजनीति के फर्क से। क्लासिकल विचारक, जैसे मैंने कहा, मैकेंडर महान, वो मानते थे भूगोल ही शक्ति का आधार है। इन विचारों का असर भी बहुत हुआ जैसे कोल्ड वॉर पॉलिसीज पर। और हाँ, दुख की बात है कि जर्मनी में जियोपॉलिटिक और लेबन्सराम जैसी चीजों का नाजी दौर में भयानक इस्तेमाल भी हुआ।
ये तो इतिहास हुआ, लेकिन डॉट्स का जोर तो क्रिटिकल टर्न पर है, आलोचनात्मक मोड़ पर। ये क्या है और क्यों जरूरी है आज?
ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सवाल पूछता है, ये जियोपॉलिटिकल विचार बनाए कैसे जाते हैं? ये मानता है कि कोई नक्शा या कोई भौगोलिक तथ्य वो अपने आप में न्यूट्रल नहीं होता, वो एक खास नजरिए से पेश की गई व्याख्या है।
अच्छा,
तो ये पूछता है भाई, ये नक्शा किसने बनाया, दुनिया को ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है, किसके फायदे के लिए, कौन सी कहानी बताई जा रही है और कौन सी शायद छुपाई जा रही है।
क्या इसका कोई हालिया उदाहरण है जिससे बात और साफ हो आजकल की दुनिया से?
बिल्कुल, डॉड्स जॉर्ज डब्ल्यू बुश के 2002 के मशहूर बुराई की धुरी एक्सिस ऑफ ईवल भाषण का जिक्र करते हैं। अब सोचिए इस एक छोटे से फ्रेज ने क्या किया। इसने तीन बिल्कुल अलग अलग देश, ईरान, इराक, उत्तर कोरिया, जिनके बीच शायद कोई सीधा लिंक भी ना हो, उन्हें एक ही ग्रुप में डाल दिया, एक ही खतरे के तौर पर पेश कर दिया।
हाँ, याद है मुझे।
तो ये कोई गहरा जियोपॉलिटिकल एनालिसिस नहीं था, ये एक बहुत पावरफुल कहानी गढ़ी गई थी। इसका रोल था एक साधा दुश्मन बनाना, और गोल क्या था, एक आक्रामक विदेश नीति, खासकर इराक युद्ध के लिए पब्लिक सपोर्ट जुटाना। ये दिखाता है कि भाषा कैसे हकीकत को बना सकती है, या कम से कम हमारी हकीकत की समझ को।
कमाल है, मतलब भाषा का इतना गहरा असर, और ये सिर्फ नेताओं के भाषणों तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? आपने जेम्स बॉन्ड का जिक्र किया था शुरू में।
हाँ बिल्कुल, यहीं पर डॉड्स लोकप्रिय भू राजनीति की बात करते हैं, जो मुझे पर्सनली भी बहुत दिलचस्प लगती है। उनका कहना है कि हम दुनिया के बारे में सिर्फ न्यूज या किताबों से नहीं सीखते, हम फिल्मों, टीवी शो, विज्ञापनों, यहाँ तक कि वीडियो गेम से भी सीखते हैं।
वीडियो गेम से भी?
हाँ, जेम्स बॉन्ड फिल्म में इसका क्लासिक उदाहरण है। देखिए कैसे वक्त के साथ बॉन्ड का दुश्मन बदलता गया, कभी सोवियत एजेंट थे, फिर कभी ड्रग लॉर्ड, कभी आतंकवादी, तो कभी कोई बड़ा कॉर्पोरेट विलन।
सही बात है,
ये फिल्में जाने अनजाने में हमारी भू राजनीतिक कल्पना बनाती हैं, हमारे दिमाग में ये खाका खींचती हैं कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, दुनिया में खतरा कहाँ से आ रहा है।
और आजकल तो वीडियो गेम्स हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, या न्यूज चैनलों पर वो जो सनसनीखेज नक्शे और ग्राफिक्स दिखाते हैं, ये सब हमें दुनिया की एक खास तस्वीर दिखाते हैं। पर क्या सब लोग इसे चुपचाप मान लेते हैं? इसका कोई विरोध नहीं होता?
नहीं, होता है, और यहीं पर डॉट्स प्रतिभू राजनीति की बात करते हैं। ये वो आवाजें और एक्शन हैं जो सरकार या मेनस्ट्रीम मीडिया की कहानियों को चैलेंज करती हैं।
जैसे?
जैसे सामाजिक आंदोलन हो गए, मानवाधिकार समूह, विरोध प्रदर्शन, या फिर इंडिपेंडेंट मीडिया, आर्टिस्ट जो अपनी कला के जरिए अपनी बात रखते हैं। ये लोग दुनिया के अलग अलग वैकल्पिक नक्शे पेश करने की कोशिश करते हैं, वो दिखाते हैं कि दुनिया को सिर्फ एक ही तरह से नहीं देखा जा सकता।
ये तो हुई मुख्य धारा और उसकी चुनौती की बात, डॉट्स कुछ और पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं, जैसे नारीवादी भू राजनीति, फेमिनिस्ट जियोपॉलिटिक्स। ये थोड़ा नया सा लगता है, इसका क्या मतलब है?
ये एक बहुत बहुत जरूरी दृष्टिकोण है। ये सवाल उठाता है कि जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा या खतरे की बात करते हैं, तो हम असल में किसकी सुरक्षा की बात कर रहे होते हैं? क्या सुरक्षा का मतलब और अनुभव सबके लिए, खासकर महिलाओं और पुरुषों के लिए, एक जैसा होता है?
अच्छा पॉइंट है।
और ये भी दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स की भाषा अक्सर कितनी मर्दाना होती है। जैसे दुश्मन के इलाके में घुसना, पेनेट्रेटिंग, कमजोर लोगों को बचाना, रेस्क्यूइंग, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये पावर डायनेमिक्स को दिखाते हैं।
क्या इसका कोई उदाहरण है जहां ये भाषा इस्तेमाल हुई हो और उसका असर दिखा हो?
हाँ, जैसे 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के वक्त एक बड़ा तर्क ये दिया गया था कि अफगान महिलाओं को तालिबान के जुल्म से बचाने के लिए जरूरी है। नारीवादी भू राजनीति ये देखती है कि कैसे इस बचाने वाली कहानी का इस्तेमाल, मतलब इसका रोल, पश्चिमी हस्तक्षेप को नैतिक जामा पहनाना था, और इसका गोल शायद कुछ और व्यापक भू राजनीतिक मकसद हासिल करना था, और इस चक्कर में अक्सर उन महिलाओं की अपनी आवाजें दब जाती हैं जिन्हें बचाया जा रहा होता है।
ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि कैसे अच्छी मंशा वाली लगने वाली भाषा का भी इस्तेमाल दूसरे मकसद के लिए हो सकता है। और पर्यावरण, क्या उसका भी भू राजनीति से कोई लेना देना है? आजकल तो बहुत बातें होती हैं क्लाइमेट चेंज की।
आज के दौर में तो शायद सबसे ज्यादा डॉडिट्स पर्यावरणीय भू राजनीति, एनवायरमेंटल जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, ग्लेशियरों का पिघलना, ये अब सिर्फ पर्यावरण के मुद्दे नहीं रहे, ये भू राजनीति के नए मैदान बन गए हैं। इनसे देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, माइग्रेशन बढ़ सकता है, रिसोर्सेज के लिए झगड़े हो सकते हैं।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद आर्कटिक का पिघलना है ना?
बिल्कुल सही, आर्कटिक की बर्फ पिघलना एक पर्यावरणीय हकीकत है, लेकिन इसने उसे एक हॉट जियोपॉलिटिकल जोन बना दिया है। नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं, तेल और गैस के भंडार सामने आ रहे हैं, नतीजा रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन जैसे देश वहां अपना दबदबा बढ़ाने और संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ में लगे हैं।
तो यहाँ पर्यावरण का बदलाव सीधा सीधा नई जियोपॉलिटिक्स बना रहे हैं।
एकदम, पर्यावरण का मुद्दा यहाँ एक भू राजनीतिक रोल अदा कर रहा है और देशों का गोल है इस बदलते माहौल से फायदा उठाना। ये क्लासिक केस है।
और फिर किताब 21वीं सदी की चुनौतियों पर भी आती होगी, जैसे चीन का उभार, उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, साइबर युद्ध, ये सब।
हाँ बिल्कुल, टॉड्स BRI को सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं मानते, वो इसे चीन की एक विशाल भू राजनीतिक दृष्टि मानते हैं। दुनिया को अपने नजरिए से कनेक्ट करने और प्रभावित करने की एक कोशिश, और साथ ही साइबर स्पेस और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जैसे नए बैटल ग्राउंड्स हैं जहां लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि हमारे कंप्यूटर और फोन स्क्रीन पर लड़ी जा रही है, हमारी राय, हमारे विश्वासों को बदलने के लिए। ये भी भू राजनीति का नया चेहरा है।
तो इस पूरी चर्चा से अगर हमें कुछ मोटी मोटी बातें निकालनी हो, कुछ की टेकअवेज क्लॉस डॉट्स के नजरिए से, तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे अहम बात, भू राजनीति नियति नहीं विमर्श है। ज्योग्राफी इज नॉट डेस्टिनी, डिस्कोर्स इज। मतलब भूगोल पत्थर की लकीर नहीं है, असली खेल है दुनिया को कैसे पेश किया जाता है, उसकी कहानी कैसे सुनाई जाती है।
ठीक है, दूसरी बात?
दूसरी, रिप्रेजेंटेशन की जबरदस्त ताकत। नक्शे, मीडिया, फिल्में, नेताओं के भाषण, ये सब मिलकर हमारी भू राजनीतिक कल्पना बनाते हैं। ये तय करते हैं कि हम किसे दोस्त समझें, किसे दुश्मन, किसे विकसित और किसे पिछड़ा या खतरनाक। ये छवियां हकीकत से ज्यादा असरदार हो सकती हैं। और तीसरी, भू राजनीति का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ विदेश मंत्रालयों या फौज तक सीमित नहीं, भू राजनीति हर जगह है। हमारे टीवी स्क्रीन पर, हमारे स्मार्टफोन पर, सिनेमा हॉल में, पॉपुलर कल्चर इसका एक बहुत बड़ा मैदान है।
और चौथी बात जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, छिपी हुई भू राजनीति। वो नारीवादी और पर्यावरणीय नजरिए हमें दिखाते हैं कि शक्ति और असुरक्षा के वो पहलू भी हैं जिन्हें ट्रेडिशनल जियोपॉलिटिक्स अक्सर अनदेखा कर देती है। सुरक्षा का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं होता।
और आखिर में शायद पांचवी बात ये कि ये कहानियां हमेशा विवादित होती हैं। दुनिया की कोई एक फाइनल कहानी नहीं होती। जो ताकतवर कहानी सुनाते हैं उन्हें हमेशा चुनौती मिलती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हमें जो कहानी परोसी जा रही है उसके पीछे का मकसद क्या है, उसका रोल क्या है और उसका गोल क्या है।
डॉट्स के कुछ विचार तो सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर उनके मुख्य तर्कों को हम अपने शब्दों में कहें तो एक तरह से वे कह रहे हैं, देखो भाई, जियोपॉलिटिक्स कोई साइंस नहीं है, ये दुनिया को एक खास ढंग से पेश करने की कला है ताकि राजनीतिक लक्ष्य साधे जा सके। ये असल में एक पर्सुएसिव स्टोरी है, दूसरों को अपनी बात मनवाने वाली कहानी।
बिल्कुल सही कहा। या फिर ये कि हम जेम्स बॉन्ड फिल्म से दुनिया में अपनी जगह के बारे में शायद उतना ही सीखते हैं जितना किसी सरकारी रिपोर्ट से। पॉपुलर कल्चर वो मैदान है जहां जियोपॉलिटिकल सोच बनाई और बिगाड़ी जाती है। ये बात थोड़ी चौंकाती है पर है तो सच।
और वो नारीवादी दृष्टिकोण वाली बात भी बहुत पावरफुल है कि हमें सोचना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे सुरक्षित बनाती है और किसे असुरक्षित। राज्यों की भाषा, सुरक्षा, घुसपैठ, संप्रभुता, ये सब जेंडर वाली मान्यताओं से भरी है जिसके असल दुनिया में नतीजे होते हैं।
और पर्यावरण के बारे में 21वीं सदी में क्लाइमेट चेंज, पानी, पिघलते ध्रुव, ये जियोपॉलिटिक्स से अलग नहीं है, ये ही जियोपॉलिटिक्स हैं। पर्यावरण अब बड़ी ताकतों की खींचतान का नया अखाड़ा है।
ये सब बातें दिलचस्प तो हैं, पर सवाल वही है कि इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है। मतलब एक आम इंसान इन आइडियाज से क्या ले सकता है?
सबसे पहली और सीधी बात तो है बेहतर मीडिया लिटरेसी। मतलब अगली बार जब हम कोई इंटरनेशनल न्यूज देखें या पढ़ें या सोशल मीडिया पर कोई वायरल नक्शा देखें तो हम रुक कर सोच सकते हैं, अच्छा ये खबर या नक्शा दुनिया की कौन सी तस्वीर दिखा रहा है, इसमें किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या कोई खास एंगल पुश करने की कोशिश हो रही है, ये कहानी किसके फायदे के लिए है।
हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है।
और दूसरा, ये हमें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को ज्यादा गहराई से समझने में मदद कर सकता है। हम सिर्फ हेडलाइंस से आगे जाकर ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि किसी भी झगड़े के पीछे कौन सी जियोपॉलिटिकल कहानियां चल रही हैं, कौन से ऐतिहासिक दावे हैं, कौन से रणनीतिक लक्ष्य हैं, हर पक्ष अपनी कहानी कैसे बना रहा है।
तीसरा, शायद ये हमें एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनाता है।
बिल्कुल, हम अपनी सरकार की फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल बयानों के पीछे छिपी कहानियों और तर्कों को बेहतर समझ सकते हैं और उन पर सवाल भी उठा सकते हैं। क्या ये दावे फैक्ट्स पर बेस्ड हैं या सिर्फ एक खास नैरेटिव बनाने की कोशिश है।
और शायद पर्सनल लेवल पर भी ये हमें अपनी ही धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है कि दुनिया के बारे में हमारे जो विचार हैं, फलाना देश अच्छा है, वो देश बुरा है, वो खतरनाक है, ये आए कहाँ से हैं, कहीं ये सिर्फ मीडिया या फिल्मों की देन तो नहीं।
हाँ बिल्कुल, ये आत्मचिंतन भी जरूरी है कि हमारी अपनी समझ कैसे बनी है।
पॉर्न जैसी फिल्मों भी अनजाने में हमारी दुनिया की समझ को कैसे गण सकती हैं। ये दिखाता है कि राजनीति और सत्ता कितने सटल तरीकों से हमारी संस्कृति और सोच में घुले मिले हुए हैं।
और मेरे लिए सबसे अहम सीख ये है कि दुनिया जैसी हमें परोसी जाती है वो अक्सर वैसी होती नहीं है। हर खबर, हर नक्शे, हर कहानी के पीछे एक नजरिया और एक मकसद होता है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक नजरिए की अहमियत बहुत ज्यादा है, खासकर आज की इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली दुनिया में। ये समझना कि जिन्हें हम तथ्य मानते हैं वो भी अक्सर किसी ना किसी व्याख्या का नतीजा होते हैं। भू राजनीति का असली रोल हमारी समझ को आकार देना है और अक्सर उसका गोल किसी खास राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना होता है।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप कोई अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखें, कोई विदेशी लोकेशन वाली फिल्म देखें या किसी नेता का भाषण सुने, तो एक पल रुककर सोचें, ये दुनिया की कौन सी तस्वीर पेश कर रहा है, कौन सी कहानी सुनाई जा रही है और कौन सी कहानी शायद जानबूझकर या अनजाने में दबाई जा रही है, किसके नजरिए को ताकत मिल रही है और किसकी आवाज अनसुनी रह जा रही है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।